ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गणतंत्र का विकल्प निरंकुश तंत्र नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन। आगामी वैशाख 9 और 10 गते को आयोजित होने वाले निवेश सम्मेलन के संदर्भ में अर्थ मंत्रालय ने विकास साझेदारों के साथ किया विचार विमर्श। चिकित्सा शिक्षा आयन संशोधन के विषय में मंत्री परिषद में विचार विमर्श चल रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री बसनेत का कथन। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 अगस्त तक विधानसभा चुनाव कराने का भारतीय निर्वाचन आयोग को किया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि अलग अलग तरीकों से दुष्प्रचार करके जनता को भ्रम में डालने का षड्यंत्र हो रहा है। आज प्रेस सेंटर नेपाल के पदाधिकारियों की तीसरी पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी झूठी प्रचारबाजी को रोकने और जनता को सही सूचना देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मीडिया की है। इस बात का जिक्र करते हुए कि पिछले समय से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को नापसंद करने वाले तत्व सरकार और सरकार के नेतृत्व के विरुद्ध अनर्गल, कपोल कल्पित और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने भ्रामक सूचना के विरुद्ध सही जानकारी देकर प्रतिवाद करने का आग्रह किया। एक प्रसंग पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ता गठबंधन पूरी अवधि कायम रहेगी। आज ही माओवादी केंद्र द्वारा काठमांडू के गोकर्णेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि गणतंत्र का विकल्प निरंकुश तंत्र नहीं हो सकता। अर्थ मंत्रालय ने आगामी वैशाख 9 और 10 गते को काठमांडू में आयोजित होने वाले तीसरे निवेश सम्मेलन के बारे में विकास साझेदारों के साथ विचार विमर्श किया। आज अर्थ मंत्रालय में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित कर मंत्रालय ने निवेश सम्मेलन के लिए नेपाल के लिए अपेक्षित तैयारी के बारे में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दात्र निकायों की राय ली। ये बात अर्थमंत्री डॉ प्रकाश चरण महत ने बताई। अर्थमंत्री डॉ महत ने कहा कि नेपाल में जल विद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि लगायत क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि निवेश के मामले में दिख रही समस्याओं को हटाने के लिए सरकार गंभीर होकर काम कर रही है। बता दें कि सम्मेलन के आयोजन के लिए अर्थमंत्री के संयोजकत्व में निदेशक समिति, मुख्य सचिव के संयोजकत्व में क्रियान्वयन समिति और उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के संयोजकत्व में प्राविधिक समिति गठित की गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बसनेत ने कहा कि शिक्षा आयन के संशोधन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आज चित्तौड़ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री बसनेत ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा आयन के विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा आयन के विद्यमान व्यवस्था के कारण नेपाल में स्वास्थ्य शिक्षा जिस रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद ने भेंट की। कतर की राजधानी दोहा में की गई इस भेंट में परराष्ट्र मंत्री साउद ने हमास द्वारा बंदी बनाए गए नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी की शीघ्र रिहाई के लिए सशक्त रूप से पहल करने का विशेष अनुरोध किया। ये जानकारी मंत्री के स्वकीय सचिव दीपक जोशी ने बताई। इस पर कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने बताया कि विपिन जोशी लगातार विदेशी बंदियों की रिहाई के लिए कतर सरकार प्रयास कर रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा ने कहा कि संघीयता का पूर्ण क्रियान्वयन सर्वदलीय सहमति के आधार पर किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 के पूर्व सभापति स्वर्गीय राजकिशोर सिंह के अर्ध आकार की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सभापति देउवा ने कहा कि लोगों के बलिदान द्वारा प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को मजबूत करना राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। सभापति देउवा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के क्षेत्र में स्वर्गीय राजकिशोर सिंह के योगदान को पार्टी हमेशा याद रखेगी। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति की बैठक इसी मार्गशीर्ष 29 गते के लिए बुलाई गई है। मार्गशीर्ष 29 गते शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर में बुलाई गई इस बैठक में महासमिति की बैठक की तैयारी, जाजरकोट भूकंप, समसामयिक राजनीतिक लगायत विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने दी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने आगामी माघ 11 गते होने जा रहे राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए दल पंजीकरण करने का निर्णय किया है। आज दोपहर पार्टी केंद्रीय कार्यालय बालकुमारी में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई जसपा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक ने निर्वाचन आयोग में दल पंजीकरण करने का निर्णय किया। राष्ट्रीय सभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुनने के लिए आगामी पौष 10 गते केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक पुनः बुलाने का निर्णय किया है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश की रक्षा करने के लिए एकल बहुमत वाली सरकार आवश्यक है। झूलाघाट चिवा भंजांग यात्रा के दौरान आज सिंधु पाल चौक के खाड़ी चौर में आयोजित सभा में अध्यक्ष ओली ने कहा कि देश की स्थायी तरीके से रक्षा करने और इसे एक समृद्ध देश बनाने के लिए एमाले की एकल बहुमत वाली सरकार आवश्यक है। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि लोकतंत्र का अवलंबन कर रहे देशों से सीखकर नेपाल की वास्तविकता के आधार पर सदन और संसदीय समिति को आगे बढ़ाया जाएगा। आज 17वीं संघीय संसद सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे ने कर्मचारियों को देश की सर्वोच्च विधायकी को विशेष बनाने के हिसाब से कार्य संपादन करने का निर्देश किया। उपसभामुख इंदिरा राणा मगर ने कहा कि जब तक मनुष्य की सोच और मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कानून बनाने मात्र से महिला हिंसा का अंत नहीं हो सकता। लैंगिक हिंसा संबोधन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उपसभामुख राणा मगर ने कहा कि नेपाल में महिला हिंसा संबंधी कानून बने हैं लेकिन इनका प्रभावकारी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और कहा कि किसी राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के लिए विषय नहीं हो सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर केंद्र की दलील के मद्देनजर वह निर्देश देता है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने की घोषणा की थी और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र का विकल्प निरंकुश तंत्र नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन। आगामी वैशाख 9 और 10 गते को आयोजित होने वाले निवेश सम्मेलन के संदर्भ में अर्थ मंत्रालय ने विकास साझेदारों के साथ किया विचार विमर्श। चिकित्सा शिक्षा आयन संशोधन के विषय में मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श चल रहा है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री बसनेत का कथन। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 अगस्त तक विधानसभा चुनाव कराने का भारतीय निर्वाचन आयोग को किया निर्देश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।